हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। सो आप सबका स्वागत है, यू आर ऑल वेलकम एंड वी आर थैंकफुल टू श्री नवाब जी जिन्होंने अपने घर में आपको और हमको भगवान की कथा कीर्तन करने का अवसर दिया है, अपॉर्चुनिटी टू स्पीक कृष्ण कथा। इनका धन्यवाद करते हैं। दागोचिया वासी भाग्यशाली हैं कि आपके ही परिवार संबंधी साथी ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा अपने जीवन को सुखी बना सके हैं और आप सबका जीवन सुखी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जानते हैं इस परिवार को, जानते हैं ना आप सब लोग, यहां से दागोचिया से हैं, अभी लालोरा में रहते हैं, जानते हैं पांच छह साल से हम इनको जानते हैं, 2006 से इनके जीवन में परिवर्तन आया है, आपको कैसे लगता है? तो अच्छा लगता है परिवर्तन, अच्छा लगता है परिवर्तन, इनके जीवन में परिवर्तन अच्छा लगता है और इनके जीवन का परिवर्तन इनके बच्चों के ऊपर पड़ा है। कोई श्लोक बोलेगा, श्लोक माइक्रोफोन दीजिए। हरे कृष्णा, थैंक यू। भगवद गीता का एक श्लोक इस बच्चे ने बोला आपके सामने, आपके बच्चे ने बोला, आपको कैसे लगा? आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसे श्लोक बोले, कैसे लगता है? यू अप्रिशिएट द बॉय, ही हैज मेमोराइज द संस्कृत वर्स फ्रॉम भगवद गीता एंड दिस वर्स वॉज स्पोकन बाय लॉर्ड श्री कृष्ण सेकंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता व्हेन ही वॉज इंस्ट्रक्टिंग अर्जुन अबाउट द एटर्निटी ऑफ द सोल। आत्मा अमर है ये बात समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक अर्जुन को पहले बोला है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं ये सामने जितने लोग खड़े हैं ना, जो उस वक्त खड़े थे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि के ऊपर दोनों तरफ से, इनमें से कभी कोई ऐसे वक्त नहीं था जब ये नहीं थे और कभी भविष्य में ऐसा समय नहीं आया क्या जब ये नहीं रहेंगे। ये सब तुम और मैं पहले थे, अब हैं और भविष्य में रहेंगे। इस श्लोक का अर्थ ये, अब समझे इसका अर्थ, समझे इसका अर्थ है तो हम हैं कौन? ये बहुत आश्चर्य का, ये बहुत बड़ा सुंदर श्लोक है। ये भगवद गीता के दूसरे अध्यायों का 13वां के 14वां श्लोक है, 12.12 दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है। अब इस श्लोक को थोड़ा सा देखते हैं। बच्चे ने हम सब के लिए ये प्रेरणा का श्लोक बोला है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। नत्वम एवाहम जातु नासम, नत्व एव अहम, न नहीं त्व तुम एव और मैं अहम मैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन न तुम और न मैं, जातु नासम हमारा कभी भी किसी समय भी नाश नहीं हुआ है। आसम हम हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं, न इमे जन अधिपाह। जन कहते हैं किसको? जनता को, पीपल। अधिपाह मीन्स किंग एंड ऑल दीज किंग विच आर असेंबल्ड हियर। ऐसे समय नहीं था कि ये भी नहीं थे। इसका मतलब ये पहले भी थे, अब हैं और बाद में भी रहेंगे। तो आप अपने लिए समझ लो इस श्लोक को। आप अभी ऐसे समझो, अब जो आप सब लोग यहां बैठे हैं ना, पहले भी थे, अब हैं और बाद में भी रहेंगे। इस श्लोक इसको ऐसे समझ लो। इससे पहले आप कहां थे ये आपको मालूम नहीं है, अब आप कहां हैं ये आप जानते हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद कहां जाएंगे ये नहीं जानते, लेकिन रहेंगे। यहां मॉरिशस में लोग श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध जो डिपार्टेड सोल है उसके लिए पीछे कुछ करते हैं, साल में एक बार 15 दिन आते हैं, करते हैं। दे डू इट, व्हाई, क्यों करते हैं? तो मर गए, खत्म हो गए, फिर क्यों करते हैं? बिकॉज वी बिलीव दैट सोल इज इटर्नल, दे आर समवेयर। हमको ये विश्वास है, दिस श्राद्ध इज ए प्रूफ दैट सोल एग्जिस्ट व्हेन बॉडी पेरिशेस। शरीर समाप्त होता है तब भी आत्मा रहती है, तब तो हम पीछे पूजा प्रतिष्ठा करते हैं किसी आदमी के मरने के बाद, करते हैं कि नहीं करते हैं? इससे एक बात बहुत बड़ी मुख्य ये सिद्ध होती है, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, न अर्जुन तुम न मैं न ये सब पहले थे। यानी ऐसा नहीं है कब ये नहीं थे, अब नहीं है और फ्यूचर में नहीं रहेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि सभी मिलके कभी एक नहीं होते हैं, हर एक व्यक्ति व्यक्ति ही रहता है, इंडिविजुअल रिमेन्स इंडिविजुअल। अब आप जो कुछ हो, हम सब अलग अलग क्यों हैं? व्हाई वी आर ऑल इंडिविजुअल सेपरेट इन फिगर, देखने में ही अलग है एक दूसरे से, हर एक का विचार भी अलग है, व्हाई? क्या रीजन क्या है इसका? हम अलग अलग क्यों हैं अभी? व्हाई वी आर इंडिविजुअली डिफरेंट फ्रॉम वन अदर, व्हाई? एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, एक कम पढ़ा लिखा है, एक बहुत धनी है, एक बहुत गरीब है, एक पतला है, एक मोटा है, एक छोटा है, एक काला है, एक गोरा है, क्यों? किसने बनाए? सब एक जैसे क्यों नहीं? सब एक जैसे क्यों नहीं है? कभी आपको ऐसा विचार आया, सोचना चाहिए कि ऐसे क्यों है? व्हाई वी आर लाइक दैट? हु हैज डेस्टिनी, हु हैज मेड दी डेस्टिनी? हमारा भविष्य ऐसे किसने बनाया? आपको मॉरिशस में पैदा किया, हमारे को पाकिस्तान में पैदा किया, किसी को अमेरिका में पैदा किया, क्यों? आपसे पूछा जाता तो आप कहां पैदा होना पसंद करते? अमेरिका में। आप वीजा लेने का झंझट नहीं, सीधा उधर ही जन्म लेते। किसके घर में पैदा होना हो चाहिए? कार्टर के घर में, जिमी कार्टर के घर में पैदा होना चाहिए। आपसे पूछा नहीं किसी ने, इसलिए मॉरिशस के गांव में पैदा कर दिया। तो कैसे ये हुआ, किसने किया, इसके ऊपर कभी विचार करना चाहिए। एक एक इंडिविजुअल डिफरेंट फ्रॉम दूसरे से, एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती है। बनाने वाला कितना होशियार होगा, हाउ परफेक्ट इज दैट पर्सन, दैट टू पर्सन आर नॉट आइडेंटिकल। उसकी शक्ल में भी दोनों एक जैसे नहीं है, उसके विचारों में भी एक जैसे नहीं है। यहां 15-20-25 मॉडल कारों के आते हैं तो बोला वही हुई है वे डिफरेंट मॉडल ऑफ कार। यहां कितने आदमी डिफरेंट मॉडल के बने हुए हैं। सो हाउ परफेक्ट इज दैट फैक्ट्री जो ऐसे बना रही है? कैसे बना रही है, किसके आधार के ऊपर बना रही है? चलो यहां एक और प्रश्न कहते हैं, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो? व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर? आगे क्या चलना, आप क्या बनना चाहते हो? ये क्वेश्चन कभी आप, अभी तो आपके विचार में इतना तो है कम से कम, आगे मतलब 10 साल के बाद हम अपने जहां काम कर रहे हैं वहां आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं। हम जहां अब रह रहे हैं मान डोगोशिया में हम रह रहे हैं तो आगे हम जाके केटरबोर्न में कहीं बहुत बड़ा घर लेना चाहते हैं, ऐसा तो मन में आता है ना किसी के, हाँ ये तो विचार आता है ना आगे क्या बनना चाहते हैं। थोड़ा सा और 100 साल आगे सोचो कि 100 साल के बाद आप क्या बनना चाहते हो, एक्सटेंड करके देखो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज इट डिपेंड्स अपॉन यूर डिजायर व्हाट यू वांट टू बी। आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। इट डिपेंड्स अपॉन यूर डिजायर व्हाट यू वांट टू बी। कृष्णा इज फुलफिलिंग डिजायर्स ऑफ इन्यूमरेबल लिविंग एंटिटीज सिंस टाइम इमेमोरियल। भगवान श्री कृष्ण असंख्य जीवों की अनादिकाल से इच्छाएं पूरी करते हुए आ रहे हैं। सो जो कुछ भी अभी है, जहां भी हमारा जन्म हुआ है, ये भी हमारी इच्छा थी। वी मेक अवर ओन फ्यूचर, हम अपने भविष्य को बनाते हैं। तो आप अपना भविष्य क्या बनाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। हम जो कुछ हैं उसके तीन कारण हैं, हमारी इच्छा, अवर डिजायर, सैंक्शन बाय सुप्रीम लॉ, भगवान से अनुमति, सैंक्शन। मैंने क्या चाहा, भगवान ने उसकी अनुमति दी, ही सैंक्शन दैट। और तीसरा क्या कारण है, डिजायर बाय लिविंग एंटिटी या जीव। इच्छा किसने की, हमने की। इच्छा पूरी किसने की, अनुमति किसने दी कि ठीक करो, वो भगवान ने। अब हमारी इच्छा पूरी करने के लिए हमें कोई शरीर चाहिए ना, इच्छा कैसे पूरी करेंगे। मानो हमारे को दाल पुई खाने की इच्छा है, तो तुम मुख होगा तब खाएंगे ना, तो कहीं से तो मुंह हम चाहिए ना। हमारे को बहुत सुंदर फूल देखने की इच्छा है, तो आंख होगी तब देखेंगे ना, तो ये सब इंद्रियां चाहिए ना। तो ये सारी प्रकृति ने एक शरीर बनाया, ऑल द इंग्रेडिएंट्स नीडेड टू फुलफिल अवर डिजायर्स इज प्रोवाइडेड बाय मटेरियल नेचर। तो तीन कारण है, आत्मा की इच्छा, परमात्मा का अनुमति और भौतिक प्रकृति का उपकरण। उपकरण मीन्स टूल्स, ये इंद्रियां क्या है, टूल है, दे आर लाइक द टूल्स। जो गाड़ी में टूल बॉक्स होता है ना, ये शरीर हमारा गाड़ी है। तो ये किसने दिया, प्रकृति ने दिया। तो अब हमारे हाथ में क्या है, इच्छा करना। नाउ यू लर्न हाउ टू डिजायर, यू लर्न दिस वन थिंग, इफ यू लर्न दिस वन साइंस, हाउ टू डिजायर राइट थिंग एट राइट टाइम, देन योर लाइफ विल बी परफेक्ट। ठीक इच्छा करना सीखना चाहिए। ये सब शास्त्रों का उद्देश्य है कि हमको ये सिखाया जाए कि हम क्या चाहते हैं। तो ये श्लोक जो बच्चे ने बोला, ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान कहते हैं हर एक आत्मा इंडिविजुअल है, ये सब मिलके एक नहीं होती है। भगवान है और हम सब हैं। अब हमारा आपस में संबंध क्या है, उसको हम भूल गए हैं, इसलिए इस दुनिया के अंदर हम भटक रहे। किसका संबंध, संबंध का मतलब रिलेशन, किसका, जीव का, किसके साथ, भगवान के साथ, क्या रिलेशन है, इसको भूलने के कारण हम दुनिया में भटक रहे। आज हम विचार करके आए थे आपके साथ, बात करेंगे कि एक मिनिस्टर 500 साल पहले, 450 साल पहले, 450 years from now, one minister from Bengal, the chief minister of Bengal, बहुत बड़ा बुद्धिमान विद्वान, उसने प्रश्न पूछा श्री चैतन्य महाप्रभु से। श्री चैतन्य महाप्रभु अभी आप जो सत्संग सुन रहे हैं, इस सत्संग को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? किसने किया ऑर्गेनाइज? आप लोग क्या जानते हैं इसमें? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना इस्कान। हाँ, एक शब्द आपको पता है, इस्कान की ओर से ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो इस्कान का फाउंडेशन, इस्कान का जो परवर्तक, इसका ओरिजिनेटर कौन है? चैतन्य महाप्रभु। इस्कान में क्या किया जा रहा था? अभी आप हम लोग आए तब आप लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप लोग? कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप ये कर रहे थे। ये कीर्तन सब लोगों को करने का अधिकार चैतन्य महाप्रभु ने दिया। उससे पहले ये वेदों का मंत्र केवल ब्राह्मण और एकांत में बैठ के जपते थे, सबको घर घर में जपने का अधिकार नहीं था। ये इतना महत्वपूर्ण है, इट इज सो सीक्रेट, ये वेदों का इतना सीक्रेट मंत्र है कि घर छोड़ के हिमालय में जाके गुरु के चरणों में बैठ के बहुत तपस्या के बाद ये मंत्र जपने को किसी एक को मिलता था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। सो चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु, अभी हम किसका डिस्कस कर रहे थे? श्लोक क्या पढ़ रहे थे? किसका? कौन से शास्त्र से? भगवत गीता से। भगवत गीता किसने बोला है? भगवान श्री कृष्ण। देखो, है ना, दुनिया के अंदर सनातन धर्म का कोई शास्त्र सर्वमानन्य है? एनी स्क्रिप्चर ऑफ द वैदिक ओरिजिन, सनातन धर्म, प्रेजेंटली कॉल्ड हिंदुइज्म, उसका एक कोई शास्त्र जो सर्वमानन्य है, इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, वो भगवद गीता है। ओनली वन स्क्रिप्चर एक्सेप्टेड बाय ऑल यूनिवर्सली इज भगवद गीता। इट इज मोस्ट अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर ऑन द प्लैनेट। इस धरती के ऊपर सबसे प्रमाणित पुस्तक है, क्योंकि भगवान ने स्वयं साक्षात कहा है। स्पोकन बाय गॉड हिमसेल्फ, भगवान ने साक्षात स्वयं बोला है। देखो, एक आदमी, अभी आप ही मॉरिशस के, मैं विचार करो कि सबसे धनी कौन है मॉरिशस में, हु इज मोस्ट रिच पर्सन इन मॉरिशस। तो कोई कहेगा ये होगा, कोई कहेगा वो होगा, वो एक फ्रेंच जिसकी बहुत बड़ी जमीन है वो होगा, कोई कहेगा नहीं दूसरा है। लेकिन अगर वो व्यक्ति स्वयं आके बताए तो उसकी बात के ऊपर विश्वास करेंगे या हम जो सोचेंगे वो ठीक है? इफ दैट पर्सन टेल्स दैट व्हाट आई एम, दैट इज परफेक्ट, दैट इज प्रूफ, ठीक है कि नहीं? तो अब हम कहें भगवान ये हो सकता है, भगवान वो हो सकता है, ये हमारे अनुमान है, दिस वी आर स्पेक्युलेटिंग। बट व्हेन गॉड कम्स एंड टेल्स हु आई एम, देन दैट इज द अथॉरिटेटिव एक्सप्लेनेशन हु गॉड इज। तो भगवान स्वयं आके बोले कि मैं कौन हूं, तब उसकी बात को हम समझेंगे। हम भगवान के बारे में कहां से सोच सकते हैं? ये बात समझ में आ रही है? तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता के द्वारा भगवान कौन है ये हमको जानकारी दे रहे हैं। इज गिविंग अस इन्फॉर्मेशन कि भगवान है कौन। लेकिन 5000 साल पहले भगवद गीता की शिक्षा दे के गए भगवान श्री कृष्ण, लेकिन लोगों ने बहुत जल्दी भुला दिया इसको, दे फॉरगॉट इट। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पूर्वज तीन पीढ़ी पहले, थ्री जनरेशन पहले भारत से जब आए थे तो उनको रामायण भगवद गीता का पता था? ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? लेकिन आप में से कितने हैं जिनको इसका पता है? अभी है ये बच्चे लोग, आपको पता है? हाँ, रामायण में कितने कांड है? अरे कृष्णा बच्चे, रामायण में कितने कांड है? रामायण क्या है? हाँ बेटा, कथा है। किसकी कथा है बेटा? वेरी गुड गुड। क्या नाम है? नाम क्या आपका? व्हाट इज योर नेम? क्या बोला? वकुल। वेरी गुड वेरी गुड। कथा है किसकी? मेरे को एक हंसी की बात याद आती है। एक स्कूल इंस्पेक्टर स्कूल में गया और उसने जाके एक प्रश्न पूछा बच्चों से कि महाराज जनक की दरबार में शंकर भगवान भोलेनाथ के धनुष को किसने तोड़ा था, ये प्रश्न पूछा उसने। आप समझ रहे हैं? सब लड़के चुप, कोई नहीं बोल रहा है। एक से पूछा इस वकील की तरह, बोलो। वो बोलता, सर मैंने नहीं तोड़ा। सर आई एम सॉरी, मैंने नहीं तोड़ा। वो इंस्पेक्टर टीचर को बोलता है, ये शिक्षा दी आपने, ये बच्चा नहीं बता सकता। टीचर पता क्या कहता है, मैं जानता हूं ये अच्छा लड़का है, इसने नहीं तोड़ा है। ही इज अ गुड बॉय, ही इज नॉट ब्रोकन एक्चुअली। इंस्पेक्टर हेडमास्टर के पास गया, हेडमास्टर को बोला, आपके स्कूल में सिंपल सा रामायण का ये प्रश्न पूछा है कि जनक की दरबार में शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा, बच्चा कहता है मैंने नहीं तोड़ा, और टीचर कहता है कि बच्चा अच्छा है, हेडमास्टर कहता है ये बच्चे कभी खिड़की तोड़ते हैं, कभी टेबल तोड़ते हैं, तो धनुष तोड़ा क्या हुआ? और राम, ये स्थिति हमारी हो गई है धर्म की जानकारी के बारे में। आप मानते हैं कि वी हैव रीच्ड टू दिस लेवल कि हमको मालूम नहीं है कि धर्म है क्या? तो 5000 साल में बताई हुई भगवत गीता की शिक्षा भारत के अंदर लुप्त हो गई। लोगों ने उसके ऊपर अपनी टिप्पणी ऐसी की, दे हैव चेंज द मीनिंग ऑफ भगवत गीता। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण फिर प्रैक्टिकल भगवत गीता को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आए। जब दोबारा श्री कृष्ण भगवत गीता को प्रैक्टिकल सिखाने के लिए आए, तब वो अपने साथ, कृष्ण के साथ कौन होता है सदा? हाँ जी, अर्जुन एंड भगवत गीता, वेरी गुड। मंदिरों के अंदर कृष्ण के साथ किसको देखते हैं? हाँ जी, राधा जी को, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण और सीताराम, लक्ष्मी नारायण, ऐसे देखते हैं ना। तो भगवान और भगवान की शक्ति ये अभिन्न है, ये इनसेपरेबल है, ये हमेशा साथ रहते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कैसे बोलते हैं हम, सीताराम बोलते हैं ना, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं ना, राधे राधे राधा कृष्ण बोलते हैं ना, और एक नाम और भी हम बोलते हैं आपके हर गांव में वो मंदिर, तब क्या बोलते हैं? हर गांव में एक एक मंदिर है शिवाला, तब हम क्या बोलते हैं? शिव पार्वती, पार्वती शिव नहीं बोलते, कभी सोचा है इसके ऊपर? हाँ, राधा कृष्ण बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, लेकिन पार्वती शिव नहीं बोलते हैं, शिव पार्वती बोलते हैं। क्यों? ये भी बहुत बड़ा रहस्य है। कृष्ण और कृष्ण की, अब एक बात पहले एक और समझ लीजिए, भगवान शक्तिमान है, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, ही हैज मेनी एनर्जीज, जैसे गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट क्या है? अभी आपके यहां गवर्नमेंट है ना मॉरिशस में, किसकी गवर्नमेंट में कोई पूछे तो कौन, किसकी गवर्नमेंट है इस वक्त, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम लेंगे और पार्टी का नाम लेंगे, यही कहेंगे ना कि सो एंड सो प्राइम मिनिस्टर एंड सो पार्टी की गवर्नमेंट है। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर या पार्टी घर में तो नहीं है ना। तो गवर्नमेंट क्या है? शक्ति है। गवर्नमेंट इज ए एनर्जी ऑफ ए पर्सन हु इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की कानून की शक्ति जो है उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट दिखती तो नहीं है, गवर्नमेंट दिखती है या नहीं दिखती है, लेकिन काम कर रही है। ऐसे भगवान की शक्ति है जिससे दुनिया चल रही, भगवान नहीं दिखता है लेकिन उसकी शक्ति से दुनिया चल रही। तो भगवान की तीन शक्तियां शास्त्रों ने बताई है। एक भगवान की शक्ति जो इस भौतिक जगत मटीरियल वर्ल्ड को चलाती है, जिसमें हम दुनिया में रह रहे हैं ना, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, संचालन चलाती है, वो भगवान की शक्ति है। उसका नाम है एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, बाहर अंग शक्ति। एक भगवान की शक्ति है
जो भगवान के आध्यात्मिक जगत स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है, उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। यहां आपको एक बात बता दें, धरती के आप यहां मॉरिशस में लैंड ज्यादा है कि सी ज्यादा है? सी ज्यादा है ना। वैसे दुनिया में भी लैंड 1/3 है और 1/4 लैंड है और 3/4 सी है, ये तो सबको मालूम है ना। लैंड इज लेस, सी इज मोर। सिमिलरली दिस मटीरियल वर्ल्ड इज 1/4 एंड 3/4 इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये जो दुनिया हमको दिख रही है ये 1/4 है, 3/4 स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। इसलिए मरने वालों के लिए पीछे हम क्या लिखते हैं, स्वर्गवासी, ये लिखते हैं ना भाई। स्वर्ग में चला गया तो स्वर्ग तो कोई जगह होगी, वहां गया होगा ना, नहीं तो लिखते हैं वैकुंठवासी, ये वैकुंठ चला गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो जगह कोई है जहां गए होंगे ना, वो कहीं तो जाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्वर्ग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है, वो तो मटीरियल वर्ल्ड में है लेकिन हमसे ऊपर है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड वैकुंठ है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एनर्जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड का संचालन करती है, मटेरियल वर्ल्ड की एनर्जी मटेरियल वर्ल्ड का संचालन करती है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। और तीसरी भगवान की शक्ति है हम सब जीव, लिविंग एंटिटीज, सोल। ये भगवान की शक्ति है। ये कैसी शक्ति है, एक बाहरंग, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। हम कौन से हैं, मार्जिनल, तटस्थ। अब मार्जिनल का मतलब क्या है, मार्जिन का मतलब क्या है, समुद्र के किनारे पे जाओ तो यहां रेत है या पानी है और बीच में एक लकीर है, उसको बोलेंगे मार्जिन। कभी कुछ आपने देखा है समुद्र के कुछ जो जलचर है, कभी समुद्र के अंदर होते हैं कभी बाहर घूमते हैं, देखा है ना। वो खेकड़ा होता है, क्या बोलते हैं खेकड़े को, ऑक्टोपस क्या, क्या जो आप बोलते हैं आप ही उसका उच्चारण कीजिए। वो कभी बाहर घूमता है कभी पानी में होता है कि नहीं होता है, इट्स लाइक दैट बोथ प्लेसेस। ऐसे हमारा भी स्थिति ऐसे है कि कभी हम बाहर अंग शक्ति के और कभी अंतर अंग शक्ति के पास जा सकते हैं, ये हमारी च्वाइस है। वो जब उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जिसके निकाल अंग्रेजी कप्स, CRB कब, तो ये कब जब बाहर आता है तो झंझट में पड़ता है कि नहीं पड़ता है, मुश्किल में पड़ता है कि नहीं पड़ता है। When it comes out of the water, is in trouble or not? Is troubled by us? And when it is in water, is free from trouble or not? सही है ना। तो ऐसे हम जीव भी जब भगवान के धाम से बाहर आते हैं तो ट्रबल में आ जाते हैं। और भगवान ओशन का सरेंडर करता है, अगर कैब के बस वरिष्ठ जो है ओशन का सरेंडर करता है, वो विशाल है तो वो सुखी हो जाता है और बाहर आता है तो दुखी हो जाता है। वो मार्जिनल है, यहां भी रह सकता है वहां भी रह सकता है। कछुआ कभी बाहर रहता है कभी अंदर रहता है। द टॉर्टोइज इज सेम वे, बट फिश टेक आउट ऑफ द सी डाइज। सो हम मार्जिनल एनर्जी है। तो भगवान की इंटरनल जो एनर्जी है, जो अभी को आपको बोला अंतरंग शक्ति है, उसकी पर्सोनिफिकेशन जब वो पर्सन बन जाती है, जैसे गवर्नमेंट पर्सन बनती है तो प्राइम मिनिस्टर बनता है। हु इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर। वो बटन दबाता तो दुनिया पूरी चलती है। जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट इज ए पर्सन ऑफ द होल अमेरिकन गवर्नमेंट, उसके हाथ में सारी गवर्नमेंट है कि नहीं, समझ में आ रहा है। सिमिलरली द इंटरनल एनर्जी वन टेक द पर्सनालिटी, देन इट इज कॉल्ड राधा, देन इट इज कॉल्ड सीता, देन इट इज कॉल्ड लक्ष्मी। कौन सी एनर्जी भगवान की, इंटरनल, अंतरंग शक्ति। जब भगवान की बाहर अंग शक्ति एक्सटर्नल एनर्जी वन टेक इन टू द पर्सनालिटी, शी इज कॉल्ड दुर्गा, पार्वती, शी इज कॉल्ड दुर्गा आर पार्वती। ये बात समझ में आई आपको। जैसे आपने भागवत में कभी कथा में सुनेंगे ना, पृथ्वी गाय का रूप धारण करके जाती है, द अर्थ टेक द फॉर्म ऑफ ए काउ, दैट इज अर्थ स्पेशल फॉर्म व्हिच कॉल्ड आदि देविक रूप, डिवाइन पर्सनालिटी इज काउ, अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ काउ व्हेन इट टेक टू पर्सनालिटी। सो इसलिए जो अंतरंग भगवान की शक्ति है उसका नाम पहले आता है, जो बाहरंग शक्ति है उसका नाम पीछे आ रहा है, शिव पार्वती पीछे आ रहा है, क्योंकि बाहरंग शक्ति है इस भौतिक जगत के संचालन के लिए। बात क्या कर रहे थे, वो भगवान श्री कृष्ण जब भगवत गीता का शिक्षा देने के लिए आए थे तो भगवान श्री कृष्ण कहां रहे थे पहले? भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? गोकुल में, मथुरा में, फिर गोकुल ले गए। अब जन्माष्टमी मनाते हैं ना, तो ये सबने सुना है गोकुल में भगवान 3 साल 3 महीने रहे। गोकुल से श्री कृष्ण भगवान आ गए वृंदावन में, 3 साल 4 महीने वहां भी रहे। वहां से आगे आ गए नंदगांव में, वहां भी 3 साल 4 महीने रह गए। ये 11 साल तक ऐसे रहे ब्रज में, वृंदावन में, ब्रज मथुरा, और फिर भगवान वहां से मथुरा आ गए। तो जब भगवान वृंदावन में रहे तो उनके साथ क्या क्या था? श्री कृष्ण के साथ कौन था वृंदावन में? गाय, ग्वाल बाल, गोपियां। कृष्ण सदा के लिए ग्वाल बालों के संग, गायों के संग और गोपियों के संग मिलते थे। तो गोपियों में सबसे प्रधान गोपी कौन थी? राधिका। तो राधिका अलग आई थी, कृष्ण अलग आए थे, लेकिन कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के चले गए तो राधिका उनके संग नहीं गई, उधर ही रह गई वृंदावन। अब भगवान श्री कृष्ण जब दोबारा कलयुग में आने के लिए उन्होंने निर्णय लिया तो उन्होंने अपने साथ राधिका को मिला लिया, दोनों मिलकर एक हो गए, दी बोथ बिकम वन। वन कैसे हुए? श्री कृष्ण का रंग कैसा है? सांवला। इस काल सांवला, सांवला का मतलब एक नाम है भगवान श्री कृष्ण का, घनश्याम। मालूम है घनश्याम? घनश्याम किसको कहते हैं? क्लाउड को, रेनी क्लाउड, जो बरसात में जलधर बादल होता है। रेनी क्लाउड विथ फुल ऑफ वाटर, दैट कलर इज कॉल्ड घनश्याम, दैट क्लाउड इज कॉल्ड घन श्याम। राजा रानी का रंग कैसा है? गोरा। कैसा गोरा? सोने जैसा, पिघले हुए सोने जैसा, मोल्टन गोल्ड। तो राधा रानी और कृष्ण जब मिलके दोनों आए तो बाहर कलर कौन सा आ गया राधा रानी का? तो कैसा कलर राधा रानी का? गोरा। तो यहां कृष्ण का नाम हो गया गौरंगा। क्या नाम हो गया? गौरंगा। सो गौरंग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, राधा और कृष्ण दोनों मिले हुए हैं, दे आर यूनाइटेड टूगेदर। किस रूप में आया चैतन्य महाप्रभु? भक्त के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ डिवोटी। क्यों क्यों भक्त के रूप में आए? भगवत गीता में भगवान ने क्या आदेश दिया है? व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्ण इन भगवत गीता? डायरेक्ट भाव मद भक्त, तुम मेरे भक्त बनो। भगवान ने क्या आदेश दिया है भगवत गीता में? मेरे भक्त बनो। अब भगवान को भक्त बनाना है तो पहले भक्त बन जाएगा तब भक्त बनाएगा ना। इफ यू वॉन्ट टू टीच समबडी समथिंग देन यू हैव टू बी दैट। किसी को मेडिसिन पढ़ाना है तो पहले डॉक्टर बनना पड़ेगा तब पढ़ाएगा। ये बात समझ में आ रही? जब खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा दूसरे को नहीं सिखा सकता। ये बात समझ में? एक बार गांधी जी के पास एक आदमी अपने बच्चे को लेके गया और बच्चा उस वक्त में गुड़ खाता था। गर्मी मई जून, आपकी मई जून ने इंडिया की मई जून, आपका जनवरी फरवरी समझ लो। बच्चा क्या खाता था? गुड़, मोलेसिस। तो उसका बाप गांधी जी को बोलता है बच्चा गुड़ खाता है आंखें दुखेंगी, इसको मना करो, टेल हिम नॉट टू ईट गुड़ टू मच। गांधी ने बोला कल आना। फिर बेचारा रिक्शा करके गया, ऑटो करके गया, गाड़ी करके गया, दूसरे दिन बोला कल आना। इन दिस वे 5 days ही सेड कम टुमारो। जब 6th day पे आया तो गांधी जी ने कहा बेटा अब तुम गुड़ मत खाना,
बस ही सेड दिस मच। उसके बाप ने कहा अगर इतना ही कहना था तो 5 दिन हमको क्यों चक्कर लगाए। एंड देन गांधी जी सेड बिकॉज आई वॉज ईटिंग गुड माई सेल्फ इट टुक मी 5 days टू गिव अप ईटिंग गुड बिफोर आई गिव अप हाउ कैन आई टेल समबडी एल्स नॉट टू ईट। 5 दिन मुझे गुड़ छोड़ने में लगे, जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा तो बच्चा कैसे छोड़ेगा। तो जब मैं अभ्यास नहीं करूंगा मैं दूसरे को कैसे सिखाऊंगा। इफ आई डोंट फिट, बहुत से लोग हैं अपने बच्चों को कहते हैं तुम सिगरेट मत पीना और बच्चे को कहते हैं मेरा सिगरेट बाजार से ले आओ तो गो एंड परचेज फॉर मी सिगरेट बट यू डोंट स्मोक। अभी आजकल तो ऐसे नहीं, पुराने जमाने में माचिस नहीं हुआ था तो घर में आग जलती थी, रोटी आग के ऊपर पकती थी और सिगरेट के लिए माचिस नहीं जलाते थे। लोग कहते जाओ आग से सिगरेट जला के आओ बच्चा, अब सिगरेट जलाएगा तो जब तो फूंक नहीं मारेगा तो जलेगी नहीं ना, तो बोले जला के ना पीना मत आज भले कैसे जला के आएगा। तो ऐसी शिक्षा देने से बच्चा सिर्फ सुधरेगा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण को जब भगवद गीता की शिक्षा देनी थी, क्या शिक्षा है भगवद गीता की, श्री कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त बनो, भाव मद भक्तो मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो मद याजी, माम नमस्कारो मुझे प्रणाम करो, मन मना तुम्हारा मन मुझ में लगाओ। ये भगवद गीता के 4 पॉइंटेड प्रोग्राम है भगवद गीता का, कृष्ण का। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और मन मुझ में लगाओ। अब यही शिक्षा देने के लिए भक्त के रूप में जब चैतन्य महाप्रभु आए तो साक्षात श्री कृष्ण थे, उनके सामने आकर उस वक्त का बंगाल का प्राइम मिनिस्टर बैठा और प्रश्न पूछने लगा कि लोग तो मुझे कहते हैं मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, लेकिन मुझे ये भी पता नहीं है अमी के मैं कौन हूं, मुझे पता नहीं है। उसका नाम था सनातन, उसका बाद में नाम पड़ा सनातन गोस्वामी। उसने ये प्रश्न पूछा, एक मिनिस्टर ने प्रश्न पूछा और भगवान से डायरेक्ट प्रश्न पूछा, मैं कौन हूं मुझे बताओ मैं कौन हूं। पहला प्रश्न ये पूछा कि मैं कौन हूं और दूसरा प्रश्न पूछा इस दुनिया में मैं दुख क्यों भोग रहा हूं, व्हाई आई एम सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। आपका ये प्रश्न है कि नहीं, कि आप ये पूछना चाहते हैं कि मैं कौन हूं और मैं आप लोग दुनिया में कुछ दुख है आपको कि नहीं है, दुख है दुनिया में कि नहीं, व्हाई वी आर सफरिंग, हमको दुख क्यों मिल रहा है, दूसरा प्रश्न ये। तीसरा प्रश्न ये पूछा साधन की साध्य के व्हाट इज द गोल एंड हाउ टू अचीव इट, जिंदगी का गोल क्या है। साध्य, साध्य का मतलब गोल ऑफ लाइफ, साधन हाउ टू अचीव दैट, दीज 4 questions वर आस्क्ड बाय देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल डायरेक्टली फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। आप इनका उत्तर जानना चाहेंगे, ये श्लोक भगवद गीता के अंतर्गत ये उत्तर है, मैं कौन हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। तुम कौन हो ये जानना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं कि तुम जीव आत्मा हो और तुम नित्य एटर्नली कृष्ण दास, यू आर दी एटर्नल सर्विटर ऑफ श्री कृष्ण। ये हमारी पहचान है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये प्रश्न पूछना चाहिए। मैं मॉरिशियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, ये हमारी शरीर की पहचान है। ये शरीर तो समाप्त हो जाएगा, ये मॉरिशियन में पैदा हुआ इसलिए मॉरिशियन हो गया, ये अमेरिका में पैदा हुआ इसलिए अमेरिकन हो गया, ये इंडिया में पैदा हुआ हिंदू के घर में पैदा हो गया तो हिंदू हो गया, लेकिन ये शरीर हमारी आइडेंटिटी नहीं है। किसी ने नाम दिया हमारे को ये, उससे पहले हमारा कोई नाम तो नहीं था, तो हम कौन है। तो मां साक्षात भगवान श्री गौरंग महाप्रभु कह रहे जीव जो है उसका स्वरूप, उसकी पहचान यह है कि वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। और आगे वही श्लोक का दूसरा भाग है कि भगवान की तटस्थ शक्ति है, जैसे हमको आपको बताया ना मार्जिनल एनर्जी है भगवान की। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि हम दुख क्यों भोग रहे हैं,
हम दुख क्यों भोग रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ये सरल भाषा में आपको समझ में आएगा, हिंदी में बहुत आसान है, मैं इसलिए कहूंगा कि अच्छा लगेगा। कृष्ण भूली से जीव अनादि बाहर मुख, अतेव माया तारे देह संसार दुख। ये शब्द भगवान के मुख से निकले हैं। कृष्ण भूलिया, कृष्ण को भूलने से, बाय फॉरगेटिंग कृष्ण, फॉरगेटिंग कृष्ण, दी लिविंग एंटिटी हैज बीन अट्रैक्टेड बाय दी एक्सटर्नल फीचर फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। एक्सटर्नल फीचर किसको कहते हैं? बाहरंग शक्ति, भगवान की भावा, ये दुनिया के चमक को देखकर इसमें फंस गया। दुनिया की, इसमें एक शब्द कहते हैं प्रभुता को भजे, सब प्रभु को भजे न कोई। भगवान की दुनिया के पीछे सब पड़े हैं, भगवान के पीछे कोई नहीं। भगवान की दुनिया के पीछे सब पड़े हुए, दुनिया चाहिए लेकिन भगवान नहीं चाहिए। ये तो ऐसी हमारी स्थिति हो गई है। इस दुनिया में दो चीजें कौन सी है जिसको सब लोग सबसे पहले चाहते हैं? दो चीजें चाहिए, जमीन चाहिए घर के लिए और पैसा। हाँ, ये दो चीजें चाहिए कि नहीं है सबको? हाँ, एक जमीन और एक पैसा। पैसा को क्या कहते हैं संस्कृत में? लक्ष्मी कहते हैं, मालूम है? लक्ष्मी कहते हैं पैसे को। पैसे को क्या बोलते हैं? लक्ष्मी। और पृथ्वी को भी विष्णु पत्नी बोलते हैं, पृथ्वी को विष्णु पत्नी बोलते हैं। शी इज एटर्नल कंसोर्ट ऑफ विष्णु। दक्षिण भारत के किसी भी मंदिर में जाएंगे तो भगवान विष्णु के साथ एक तरफ लक्ष्मी होती है और एक तरफ भूदेवी होती है, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी लक्ष्मी को कहते हैं, भूदेवी पृथ्वी को कहते हैं। श्रीदेवी चल है, चल का मतलब मूविंग है, और भूदेवी अचल है, इज इमूवेबल है, लेकिन दोनों है क्या? विष्णु पत्नी। तो पत्नी कहां सुखी होती है? अपने पति के घर में ना। कोई उसको छीन के लाएगा उसके पति से वो सुखी होगी? कौन ऐसा आपको एग्जाम्पल याद आता है जो भगवान की शक्ति को भगवान से छीन कर लाया था? रामायण में रावण सीता को उठा के आया, राम को वन में भटकने के लिए छोड़ के आया। सीता को उठा के आया, लक्ष्मी को लेकर आया, और नारायण को वन में भटकने के लिए छोड़ के आया। उसको क्या बोलते हैं आप? रावण को क्या बोलते हैं? राक्षस, यही बोलते हैं ना। और उसके पास क्या था? सोने की लंका थी। सब नाश हो गया कि नहीं हो गया? इस दुनिया के सारे लोग रावण बने हुए हैं। लक्ष्मी सबको चाहिए, नारायण कोई नहीं चाहता। सबको लक्ष्मी चाहिए, नारायण के कोई पूजने को तैयार नहीं है। तो उनका भी होगा रावण की तरह आखिर में सर्वनाश। कोई साथ ले जाएगा क्या धन दुनिया से? और पृथ्वी, ये मेरा घर, ये मेरी जमीन, ये बहुत झगड़ा होता है। फ्रेंच ने बोला मॉरिशस हमारा है, और ब्रिटिश आया बोला निकलो तुम्हारा नहीं हमारा है। और फिर आप लोग जब जाके तो बोलो नहीं आप लोग ब्रिटिश भागो ये हमारा है। लेकिन सब समझते हैं हमारा है, लेकिन ये मॉरिशस की लैंड हंसती है, बोलती मूर्ख तुमसे पहले कई आए कई मर गए, किसी की नहीं बनी, किसी की नहीं बनी। आपकी जेब में मॉरिशस का नोट है ना, पड़ा है ना, आप उसको अपना मानते हो ना? आपके जेब में तो आपका है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ क्या है पढ़ो जरा, किसकी जेब में है जरा पढ़ के देखो उसके ऊपर क्या लिखा है। प्रॉपर्टी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ मॉरिशस लिखा होगा, लिखा है कि नहीं? आप समझते हैं हमारा, लेकिन उसके ऊपर लिखा है कि वो आपका नहीं है। आप उसको मान के बैठे हैं हमारा, लेकिन आपका नहीं है, उसके ऊपर लिखा है साफ है कि नहीं? लिखा हुआ नहीं है, इट्स रिटन राइट ऑन दैट नोट दैट इट इज प्रॉपर्टी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ मॉरिशस, वी थिंक इट्स अवर्स। हमको दिया गया है कि हम उसका उपयोग करें, वी कैन यूज इट बट वी कैन नॉट ओन इट। उसके उसके मालिक बन नहीं सकते, मालिक उसकी गवर्नमेंट है।
ऐसे ही दुनिया में किसी को हमने बेटा, किसी को भाई, किसी को पति, किसी को मान के रखा है, लेकिन है सब भगवान के, कोई किसी का नहीं है। हमने मान के रखा है लेकिन उसके ऊपर भी स्टैंप लगी है, रिजर्व बैंक ऑफ कृष्णा की प्रॉपर्टी है। वी थिंक इट इज अवर्स बट डजंट बिलोंग टू अस एक्चुअली। ये बहुत, ये सीक्रेट ट्रुथ है, समझ में आना चाहिए। अभी नोट मेरी जेब में तो मैं समझता हूं मेरा हूं, और बाहर जाके वो सूसू की सर्जी लूंगा तो सूसू वाले का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो समझेगा मेरा है तो मेरा कहां था, तो जो जो दूसरा कहेगा मेरा है और तीसरा कहेगा मेरा है, लेकिन कोई नहीं पढ़ता है कि हम में से किसी का नहीं है। इस दुनिया में सबके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, हम सबके ऊपर स्टैंप लगी है। क्या स्टैंप है? जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, वी ऑल बिलोंग टू कृष्ण। इसलिए हमारे जो पुराने लोग थे ना, हमारा नाम कैसा रखते थे, नारायण दास, गोपाल दास, रामदास, ऐसे रखते थे ना, पुराने नाम ऐसे थे। अभी तो टिंकू पिंकू लिकू मिकू, जिसका कोई मतलब नहीं, देयर इज नो मीनिंग टू दैट। ऐसे नाम रखे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, अनर्थ है सब। अरे कोई नाम का भी अर्थ होना चाहिए ना, गुट्टू मुट्टू। नाम रखने में भी बहुत बड़ा विज्ञान शास्त्र हुआ करता था। जिसके बेटे का नाम नारायण है, सारा दिन नारायण नारायण जपेगा ना तो राम राम का जप हो ही जाएगा ना। तो बच्चों के नाम तो कम से कम ऐसे सुंदर रखो कि भगवान की याद आ जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए, भगवान या भगवान के भक्त का नाम रखना चाहिए। तो जीव के हम क्या है, मैं कौन हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का एटर्नल सर्वेंट हूं। मैं दुख क्यों भोग रहा हूं, भगवान को भूलकर, बाय फॉरगेटिंग। कृष्ण भूलिया नाम लिखा है, भगवान भूलिया नहीं लिखा है, कृष्ण भूलिया लिखा है। भगवान भूलिया का ऐसा अर्थ निकालेंगे, भगवान का कोई भगवान दुनिया में आजकल बन रहा है, किसी को भी लोग भगवान मान लेते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है दुनिया की, भगवान है कौन? भगवत गीता में क्या लिखा है, जहां श्री कृष्ण बोलते हैं तहां क्या लिखा है वहां, श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले। तो जो भगवान है उसको भगवान कहना चाहिए, सबको भगवान कहना ठीक नहीं है। कृष्ण भूलिया, जब भगवान श्री कृष्ण को जीव भूल जाता है तो वो दुख संसार में, कौन उसको दुख देता है? यहां लिखा है माया, उसको माया दुख देती है। इस दुनिया में आप ऐसे समझ लो कि ये दुनिया जेल है। क्या है? प्रिजन हाउस है। हम सब जेल में हैं। क्यों जेल में पड़े हैं भाई? आदमी को जेल में क्यों डालते हैं? Why somebody is put in a prison? He disobey the law of the country। देश के कानून का उल्लंघन करेगा, कोई अपराध करेगा तो जेल में जाएगा। We have disobeyed the law of supreme lord, therefore we are put in this prison house in the form of material world। तो प्रिजन में आदमी को दुख मिलता है ना, he will suffer in prison। लेकिन प्रिजन में एक और भी एस्पेक्ट है, रिफॉर्मेशन, उसको सुधरने का मौका दिया जाता है। तो ये सत्संग है, ये सुधरने का मौका है हमारे लिए। वी हैव ए चांस टू रिफॉर्म, द सत्संग इज टू चांस। हमने बोला ना, आपने इस परिवार में पांच छह साल में परिवर्तन देखा, दे आर रिफॉर्मिंग, दे आर रिफॉर्मिंग व्हाट दे फॉरगॉट, देयरफॉर दे आर इन दिस वर्ल्ड बट नाउ दे आर रिफॉर्मिंग एंड reestablishing their remembrance of their original identity, jivera swarup krishna nitya das। to bhagwan shri krishna kehte hain krishna bhulne se is duniya mein jeev dukhi hota hai, kaun dukh deta hai? maya। aap log jo vivahit shaadi shudh se yahan baithi hain wo apne sasural ko kya bolte hain? ससुराल को क्या बोलते हैं? हिंदी में मई का बोलते हैं, मालूम है मई का? एक पुराना एक फिल्म में गाना हुआ करता था, याद है किसी को? क्या था? मैं मई के चली जाऊंगी। हाँ, मैं मई के चली, याद है? इसमें क्या था, क्या था? पत्नी अपने पति को बोलती है कि तुम मेरा ये नहीं ला के दोगे तो मैं मई के चली जाऊंगी। अब जो स्त्रियां शादीशुदा हैं उनसे मैं प्रश्न पूछता हूं कि वो मैके में सुखी रह सकती हैं क्या? कहां सुखी रह सकती हैं? अपने पति के घर में, माता पिता के घर में जाके मौज मना सकती है, घूम फिर सकती है, लेकिन सुखी नहीं रह सकती। सुखी तो केवल अपने पति के घर में होती है, ये सत्य है कि नहीं? तो ये दुनिया क्या है? मैका है हम सबका। ये पुरुषों का भी मैका है, स्त्रियों का भी मैका है, क्योंकि ये माया का है। ये जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, ये माया का है। जो यहां आया है वो दुख भोगेगा। क्यों आया है? भगवान के ला का, दे हैव ब्रोकन द लॉ ऑफ धर्म, भगवान के कानून को तोड़ के आए हैं, इसलिए दुनिया के अंदर आए। तो माया उसको दुख देती है जो भगवान को भूलता है। इसका अर्थ, अगर भगवान को याद कर लो तो माया छोड़ देगी। सिंपली इफ वी स्टार्ट रिमेम्बरिंग कृष्णा, चेंजिंग हिज होली नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सुखी हो जाएंगे। एक स्लोगन था, चेंट एंड बी हैप्पी, कृष्ण नाम का जप करो और सुखी हो जाओ, क्योंकि फिर माया आपको दुख नहीं देगी। साध्य क्या है? श्री कृष्ण भगवान की, हम क्या है? भगवान के सेवक हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना। सो साध्य क्या है? प्रेम भक्ति। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना हमारा ऑब्जेक्ट है, गोल है। जैसे आप लोग जब पढ़ लेते हो तो कहते हैं आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कहीं नौकरी मिलनी चाहिए, सर्विस मिलनी चाहिए। तो किसकी सर्विस पहले, सबसे पहले किसकी सर्विस प्रेफर करते हैं? गवर्नमेंट जॉब मिले तो बड़ा। क्यों? गवर्नमेंट बहुत बड़ा है, कंपनी बहुत छोटी है, बड़े की सेवा में बड़ा बेनिफिट है, पेंशन है और कुछ है, और प्राइवेट सर्विस के अंदर बहुत बड़ी, वो तो खाल छीन लेते हैं, काम लेते हैं, जो 50,000 तनख्वाह देते हैं तो 1,00,000 का काम लेंगे तक 50,000 देंगे, मुफ्त में थोड़ी देंगे। गवर्नमेंट का काम चलता है, काम करो नहीं करो पर तनख्वाह आती रहेगी। तो बड़े का काम, गवर्नमेंट की नौकरी क्यों पसंद करते हैं? कि बड़ा है, भद्द है, बिग है। ऐसे ही सर्विस ही हमको करनी है तो भगवान की सेवा नहीं क्यों ना करें जो सबसे बिग है? इफ एट ऑल वी हैव टू सर्व, देन व्हाई नॉट टू सर्व गॉड। जो बिगेस्ट गवर्नमेंट है वो यहां पेंशन नहीं मिलेगा, मरने के बाद ऊपर ही पेंशन मिलेगी। ये तो पेंशन यहां मरने के साथ बंद हो जाती है, लेकिन ये कृष्ण भक्ति की पेंशन तो उसके बाद भी चलेगी, इट विल कंटिन्यू। तो उसकी सर्विस करनी चाहिए ना। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपका आजकल, आपसे पहले एक ऐसे आया करता था, माई एम इन लाइफ, अच्छा इंग्लिश में एक ऐसे हुआ करता था, माई एम इज लाइफ इज टू बिकम डॉक्टर, माई एम इज लाइफ इज टू बिकम इंजीनियर, माई लाइफ एम इन लाइफ इज टू बिकम बिजनेसमैन, व्हाट यू विल डू आई विल सर्व। यही ना, क्या करोगे सब कुछ बन के? आई विल सर्व, ये लिखना पड़ेगा ना। तो सर्विस ही करनी है तो भगवान की सर्विस करें जो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। तो ये इस्कॉन सोसाइटी कृष्ण भावना अमृत संघ हमको कृष्ण सेवा करना सिखाता है। और इसका साधन क्या है? व्हाट इज दी मीन्स टू अचीव दैट गोल? भक्ति। श्री कृष्ण की भक्ति इसका साधन है। और भक्ति में तीन चीजों की जरूरत है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना, टू नो अबाउट कृष्ण। पहले जिसकी सेवा करनी है उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उसको बोलते हैं संबंध। भाई आपको लड़की बड़ी होती है तो किसी लड़के को ढूंढते हैं ना शादी के लिए, तो उस लड़के के बारे में जानकारी लेते कि नहीं लेते, कैसा है, कमाता है कि नहीं है, देखने में अच्छा है, पता करते हो कि नहीं करते हो? और जब उसके साथ एंगेजमेंट करते हो तो उसको बोलते संबंध स्थापित हो गया। एंगेजमेंट का मतलब संबंध। ऐसे जब हम जीव को भगवान की सेवा करनी है तो कृष्ण के बारे में जानकारी तो लेनी चाहिए ना, उससे संबंध स्थापित करना है। तो गेट नॉलेज अबाउट कृष्ण इज कॉल्ड संबंध। संबंध ज्ञान भक्ति का पहला अंग है। अब लड़की के लिए लड़का ढूंढ लिया, फिर क्या करना पड़ेगा? शादी। और शादी करोगे तो फिर लड़की पत्नी बन के जाएगी, पर फिर क्या करेगी? काम, सेवा करेगी, रोटी पकाएगी, कपड़े धोएगी, सब कुछ काम करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? आजकल नहीं करती है, करती है, करे, करना पड़ेगा ना। तो दूसरा भक्ति का अंग है सेवा करना। उसका उसके लिए टेक्निकल वर्ड है अभिधेय। संबंध कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण के विषय में ज्ञान। अभिधेय श्री कृष्ण की सेवा में लगना। अब शादी हो गई, अब क्या चाहिए? अब तो बच्चा होना चाहिए घर में, तो कोई रिजल्ट आनी चाहिए, प्रयोजन होना चाहिए उसका। शादी का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन के पीछे शब्द आता है प्रोजेनी। शादी का प्रयोजन है प्रोजेनी, कि हमारा वंश चलना चाहिए, हमारी कुल परंपराएं चलनी चाहिए, इसीलिए शादी की जाती है कि हमारा वंश चले। तो प्रयोजन क्या है भक्ति का? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम इज प्रयोजन। संबंध अभिधेय, प्रयोजन इज साधन एंड साधित। ये चार प्रश्नों का उत्तर उस प्राइम मिनिस्टर सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। और आने वाली 19 तारीख को जैसे जन्माष्टमी अगस्त में आती है, श्री कृष्ण का प्रकट्य दिवस होता है, ऐसे 19 मार्च को चैतन्य महाप्रभु का होली के दिन के ऊपर प्रकट्य का दिवस है। होली मनाते हैं तब क्या करते हैं हम? खुशी में रंग डालते हैं और दूसरे को पहचान भी नहीं होती है कि ये इसकी शक्ल ही बदल जाती है ना। ऐसे भगवान भी होली के दिन आए तो रंग बदल गया है। वो थे तो सांवले, फिर गोरे बन के आ गए। तो गौरंग महाप्रभु होली के दिन पे प्रकट हुए हैं। और उस दिन पूर्णिमा होती है, चंद्र पूरा चंद्रमा निकला होता है, गौर चंद्र। तो आप लोग सबको निमंत्रण है, इस तरफ जाएंगे फिनिक्स की तरफ तो राधा गोलोकानंद में, और इस तरफ जाएंगे तो कृष्ण बलराम मंदिर में। उस दिन सायं काल को बहुत बड़ा उत्सव होगा जन्माष्टमी की तरह। आप सब आइए उधर और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कीजिए। विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अंदर हम सब लोगों को भगवत गीता की शिक्षा बहुत इजीली, जो घर बैठे हुए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये सिखाने के लिए आए। ही मेड इट वेरी इजी व्हिच वाज अनअवेलेबल अदरवाइज। वन हैज टू लीव होम एंड गो टू द फॉरेस्ट टू गेट दैट नॉलेज इज अवेलेबल इन अवर ओन होम बाय मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और यहाँ एक लाइन के साथ इस कथा को समाप्त करते हैं। कल भी हमने कहीं पूछा था मंदिर में कि आज इंडिपेंडेंट डे है मॉरिशस का, 40 साल 42 साल पहले मॉरिशस इंडिपेंडेंट हुआ। उससे पहले मॉरिशस में करेंसी चलती थी, रुपया था, लेकिन उसके ऊपर क्वीन विक्टोरिया का फोटो हुआ करता था। अब किसी के पास वो नोट घर में पड़ा होगा, बाजार में उससे कुछ मिलेगा? वो करेंसी अभी यूज में आया नहीं, मिलेगा, काम नहीं आएगी ना। वो था, करेंसी थी, लेकिन आज नहीं है। आज जो करंट करेंसी, आज जो मॉरिशस की करेंसी है, जिसके ऊपर राम गुलाम जी का फोटो है, वो करेंसी ले जाएंगे तो कोई चीज मिलेगी? तो कोई चीज होती है जो करंट करेंसी होती है, वही यूज में आती है। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार करंट करेंसी है कलयुग की। इट कैन ओनली गिव यू कृष्ण भक्ति, नो अदर वे। पुराना सब है ठीक है, लेकिन वो करेंसी है, करेंसी अथोराइज है, गवर्नमेंट की है, लेकिन अब काम नहीं आएगी। इट इज नॉट प्रैक्टिकल नाउ। सो कलयुग के लोगों को अगर मानव जन्म की सफलता करके कृष्ण भक्ति करनी है, राम भक्ति करनी है, तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा अति आवश्यक है। देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे। और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में भी एक हनुमान था, मुरारी गुप्ता। वो हनुमान ही आए थे और वो कहते थे मैं राम की भक्ति करूं। चैतन्य महाप्रभु कहते आप सच्चे भक्त हो, आप राम के भक्त हो, आप राम की ही भक्ति करो, यू आर परफेक्ट फॉर दैट। मुरारी गुप्ता को इसे लाइक दैट। मुरारी गुप्ता हनुमान जी के रूप में आए थे। फिजिशियन थे लेकिन वो हनुमान का स्वरूप थे। सुचेतना महाप्रभु के बारे में जानोगे तो कल युग में आपका जीवन बहुत उत्तम और सरल हो जाएगा एंड यू विल गेट परफेक्शन इन दिस वेरी लाइफ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट है? एनी क्वेश्चन और कमेंट? यू वांट टू नो एनीथिंग? हमने आपको ये बताया कि आप कौन हो ये पहचान लो, और आप जो कुछ भी हो, आपको सेवा किसी की भी करनी पड़ेगी तो भगवान की सेवा कर लो तो जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि हम हैं ही भगवान के नित्य सेवक और उसी को रिवाइव करना है, यही कृष्ण भावना का उद्देश्य। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन और कमेंट? इट्स कंप्लीट वन आवर।